हम लोगों ने पिछले 28 और 29 श्लोक में देखा था कि सारे वेद जो है वासुदेव पर हैं, अर्थात वासुदेव में ही ले जाने वाले हैं। वेदों में वर्णित जो यज्ञ हैं उनका उद्देश्य भगवान वासुदेव को संतुष्ट करना है। जो योग आदि हैं क्रियाएं, वह भी भगवान वासुदेव की ओर लेके जाने वाली हैं, ताकि भगवान का हृदय में साक्षात्कार हो, अष्टांग योग इत्यादि का जितनी भी क्रियाएं हैं। और जो सकाम कर्म है, जो स्वर्ग लेके जाने वाले हैं वैसी क्रियाएं, वह भी वासुदेव परक हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का सुख भी भगवान वासुदेव के सुख का एक अंश मात्र है। जितना भी ज्ञान है उसका उद्देश्य भगवान वासुदेव का अनुभव करना है, और सारी तपस्याएं भगवान वासुदेव की ओर प्रसन्नता के लिए ही की जानी चाहिए। ये सब हमने चर्चा किया था। और जो शुद्ध भक्ति है, इसे परधर्म कहा जाता है, वह भी भगवान वासुदेव के लिए ही की जाती है। हमने शुरुआत में पढ़ा था ना, यह तो भक्ति अधोक्षजे। परधर्म जो है वह भगवान अधोक्ष भगवान के लिए, अधोक्षज कृष्ण के लिए किया जाता है। ये अधोक्षज शब्द जो है वह भगवान कृष्ण के लिए रिजर्व है। जैसे प्राइम मिनिस्टर शब्द हर किसी के लिए उपयोग नहीं कर सकते, अधोक्षज शब्द जो है वो किसी देवता के लिए नहीं, केवल भगवान कृष्ण के लिए, विष्णु के लिए कर सकते हैं। तो परधर्म और वासुदेव परागति, मतलब ये भक्ति का आचरण करके व्यक्ति को जो परागति प्राप्त होगी वो कौन है? भगवान वासुदेव। अब ये सब बातें हमने यहां तक सुनी। अब हम लोग आज श्लोक क्रमांक 30 को देखेंगे, जिसमें ये स्थापित किया जाएगा। इसका लिंक है, मैं अभी बता दे रहा हूं। वेदों का अंत है वेदांत, और वेदांत का पहले दो श्लोक हैं, अथात ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादि अस्य यतः। मतलब वेद जो है, जो ज्ञान की पराकाष्ठा पे लेके जाएंगे, वेदांत को पढ़ रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है? वह यह जिज्ञासा करे, ब्रह्म जिज्ञासा करे। और वह ब्रह्म जिज्ञासा कैसा है, ब्रह्म कैसा है? जन्मादि अस्यतः, जिससे ये जगत आया है। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि आपने कहा कि वेद वासुदेव परक हैं, लेकिन वेद का अंत क्या बोल रहा है? हमें उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए जो जगत का कारण है। क्या आप मेरी बातें समझ में आ रही हैं? अगर किसी को नींद आ रही तो मेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, सब अलर्ट हैं। वेद का अंत यह है कि व्यक्ति ये जिज्ञासा करे कि जगत का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता कौन है। तो अब कोई मान लीजिए आशंका करे, श्रीधर स्वामी इस बात को बता रहे हैं कि कोई शंका करे कि भाई वेद तो उस स्रोत को, स्रोत परक है, स्रोत को जानने के लिए है जो जगत की सृष्टि करने वाला है, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि वासुदेव परक है? तो ये जो आगे के 30 से लेकर मैं 30, 31, 32, 33, 34 पांच श्लोक हैं, ये स्थापित करेगा कि वही, वो कोई और नहीं है जगत का स्रोत, भगवान वासुदेव ही है। क्या आप लिंक समझ पा रहे हैं? 28-29 में क्या सीखा कि भगवान वासुदेव ही परक, वासुदेव परक योग वेद हैं। फिर कोई शंका करे, नहीं वेद तो यह आपको इस ज्ञान तक लाने के लिए निमित्त है कि आप जिज्ञासा करो जगत का स्रोत कौन है। तो अब इन श्लोकों में यह समझाया जाएगा कि भगवान वासुदेव ही जगत की सृष्टि करने वाले हैं, वही इसका पालन करते हैं, वही संहार करते हैं, कैसे करते हैं, वह सब इन श्लोकों में वर्णन किया जाएगा। और उसके द्वारा स्थापित किया जाएगा कि वासुदेव परक ही वेद हैं, वेद जो है वासुदेव परक ही हैं। सब हाथ समझ में आ रहा है ना, लिंक समझ में आना चाहिए, तो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। चलिए ठीक है, थोड़ा दोबारा सुनेंगे तो समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। अभी श्लोक पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि श्लोक बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि एकदम से सृष्टि चालू हो जाती है, भगवान सृष्टि करने वाले हैं। तो आदमी प्रश्न करेगा कि भाई ये कहां से श्लोक आ गए, क्यों सृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं, और किस प्रकार से सृष्टि की लीला भगवान की उदारता है, इसकी वर्णन भी हम सुनने का प्रयास करेंगे। तो मेरे पीछे बोलिएगा टेक्स्ट नंबर 30। स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सद असदरूपया चासौ गुणमया गुणो विभु। तो अब देखिए, स एव, अरे वही कोई और नहीं है, स स मतलब वे वासुदेव ही, वही वासुदेव हैं। इदम, इदम मतलब इस जगत को, ससर्ज जो जिस जगत की सृष्टि करते हैं, कब करते हैं? अग्रे, अग्रे मतलब सृष्टि के पहले, शुरुआत में, अर्थात भगवान का अस्तित्व इस सृष्टि के पहले था। कैसे कर कौन करते हैं तो कह रहे हैं भगवान। कैसे करते हैं तो कह रहे हैं आत्म माया, अपनी शक्ति से करते हैं, किसी दूसरे की उनको सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। यह उनकी स्वराटता को दिखाता है, यहां तक कि किसी को प्रार्थना भी नहीं करने गया कि भगवान अब सृष्टि कीजिए, जब कोई है ही नहीं तो प्रार्थना कौन करेगा, कोई डोनेशन भी नहीं दे सकता, तो भगवान ही इसको करने वाले हैं, अपनी शक्ति से अपनी इच्छा से करते हैं, और माया का अर्थ भी अपनी कृपा से करते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि जीवों को मौका मिले वह भगवान की भक्ति कर सकें और भक्ति करके भगवान की प्राप्ति कर सकें। जब सृष्टि नहीं होगी तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब उस माया के रूप के बारे में बता रहे हैं, माया कैसी है, सद असद रूपया। देखिए सद का अर्थ क्या होता है थोड़ा समझिएगा, सद का अर्थ होता है कारण और असद का अर्थ होता है प्रभाव या फिर कार्य। इस जगत में हर वस्तु के पीछे कोई कारण दिखता है कि नहीं, ऐसी तो कोई वस्तु दिखती नहीं है जिसके कोई कारण ना हो। ना ना ना, ना सर्व कारण कारण नहीं बोल रहा हूं, इस जगत में देयर इज ऑलवेज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे ये करताल आप देख रहे हैं तो करताल का कारण क्या है, कारण यूज नहीं पूछ रहा हूं, पीतल, पीतल है और कारण क्या है, पीतल से तो बनी है, इसे कहते हैं उपादान कारण। क्या कहते हैं, उपादान, जिससे वस्तु बना है। चलिए पीतल ये नहीं समझ में आएगा, एक मिनट, अभी हम लोगों ने खीर और कुछ भक्तों ने खीर प्रसाद खाया था तो उसके उपादान कारण क्या है माता जी, सुरसरिता माता जी बनाएंगे, मैंने बनाई थी, तो दूध और चावल और चीनी जो हो गया ये कौन से कारण हो गए, उपादान कारण। और उसको बनाने वाली माता जी कौन सी, आप कौन सा कारण बनी आप, निमित्त कारण। आप समझ में आ रहा है, अगर इस दूध चीनी चावल रहे भी तो क्या अपने आप खीर बन जाएगी, नहीं। तो निमित्त कारण और उपादान कारण के बिना कोई जगत में वस्तु नहीं होगी। तो आप समझ पा रहे हैं, खीर अगर आपके सामने यानी प्रभाव के रूप में कार्य के रूप में है तो उसके पीछे दो कारण होंगे, कौन से कारण, निमित्त कारण और उपादान कारण। प्रभु जी आज आप भले बताते थे, इतना कठिन कठिन बातें बोलेंगे तो हम बुखार से क्या कहते हैं, गले यहाँ पे प्याज बांध लेते हैं और बुखार आ जाता हमको, तो, लेकिन भागवत एक बहुत बहुत उच्च मतलब वेदांत के ऊपर टीका है, तो समझना जरूरी है। इतना कठिन तो नहीं समझ, खीर का उदाहरण देकर तो समझ में आ जाएगा ना कि खीर, खीर तो समझ में आती है। उसी प्रकार से आप इस घर को देख रहे हैं, इस जगत को देख रहे हैं, तो उसकी जगत किसी वस्तु से बना है, आप जानते हो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इत्यादि सब उपादान कारण हो गए, और भगवान की जो काल शक्ति है उसका निमित्त कारण है भगवान, इसके पीछे समझ में आ रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि सद असत रूपया, इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसको आप बोलेंगे उसका कोई कारण नहीं है, ये जगत में है। ध्यान दीजिएगा कि आध्यात्मिक जगत सद असत रूप नहीं है, क्योंकि वहां पर हर वस्तु शाश्वत है, इसीलिए समझना मुश्किल होता है हमको। जैसे हम कहेंगे कि हम भगवान से आए हैं तो तुरंत कहेंगे आप कवाए, भाई आप पूछेंगे ना कि मान लीजिए कहीं खीर बनी है तो कब बनी, ये प्रश्न आएगा, कितनी पुरानी है, लिखा रहता है ना दवा में। अब मैं कहूं कि हम भगवान से आए हैं लेकिन हमारी सृष्टि कभी नहीं हुई तो समझने में कठिनाई हो रही है कि नहीं, नहीं समझ में आती बात। हम कहा जाता है कि हम भगवान से आए हैं तो तुरंत हम सोचने लगते हैं कि कार्य कारण, एक समय भगवान थे और हम नहीं थे और हम भगवान से आए, यही तो होता है ना। जैसे पहले पीतल था, पीतल इस रूप में नहीं था, अब पीतल जो है एक करताल के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। तो कुछ कुछ बातें मैं समझा रहा हूं, ये समझ में नहीं, हम लोग समझते चलते नहीं। सद असत का मतलब समझ में आ रहा है, भौतिक प्रकृति हमेशा रहती है, केवल सुप्त अवस्था में रहती है, सुप्रधान कहते हैं, महतत्व कहते हैं, उस पर भगवान जब देखते हैं तो उसमें शोभ होता है, एजिटेशन होता है, गुणों का गुण जो है एजिटेट होते हैं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण बराबर की अवस्था में रहते हैं, फिर एजिटेशन होता है, उससे जगत की सृष्टि होती है। तो इस प्रकार की माया से असौ मतलब वही भगवान गुणमया अगुण विभो, अर्थात गुणमय मतलब ये जो माया है वह गुणमयी है, आप जानते हो ये जो तीन माया है ये त्रिगुणात्मक माया है, सत्व रजो तमोगुण से बनी माया है। तो भगवान अगुण है, उनमें कोई गुण नहीं होता, गुण अर्थात रजोगुण तमोगुण सत्वगुण नहीं होता, दिव्य गुण है, लेकिन फिर भी वो भगवान विभू जो सर्वसमर्थ हैं वे इस जगत की रचना करते हैं। वो विभुवान कौन है? भगवान वासुदेव। तो इसलिए जो बात आ रही थी कि वेद है उस व्यक्ति को या उस स्रोत को, उस जगत के स्रोत को जानने के लिए परख हैं जो जगत की सृष्टि का कारण है, तो यहाँ पे बात स्थापित कर रहे हैं कि वो कोई और नहीं भगवान वासुदेव ही हैं जो माया के द्वारा इस जगत की सृष्टि करते हैं। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, शायद मन में आ जाए कि अगर भगवान निर्गुण है और भगवान माया की जो माया है ये गुणमयी है, तो ये भगवान में कैसे आ गई? तो बात ध्यानपूर्वक सुने कि माया शाश्वत है, भगवान की भौतिक शक्ति शाश्वत है, लेकिन शाश्वत रूप से भगवान से अलग है। अलग मतलब उनसे दूर रहती है, और भगवान उसको समय समय पर, इंग्लिश में कहेंगे, एक्टिवेट कर देते, क्रियान्वित कर देते। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कभी भी गुणों के संपर्क में आते हैं, वो हमेशा से है। अब मैं जब बोलूंगा हमेशा मतलब कब से मन में चल रहा होगा, कब से चल रहा है, अनादि काल से माया है, अनंत काल तक रहेगी, समय समय पर उसको क्रियान्वित करते रहते। प्रभु जी कोई लीला सुनाइए, तो प्रभु जी लीला सुनाने के लिए नहीं आए, वैसे लीला ही सुना रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। वो लीला अभी समझ, ये लीला भी समझने बड़ी कठिन है, सृष्टि लीला ही चल रही है, सृष्टि लीला ही सुना रहा हूं, थोड़ा फ्लेवर अलग है, ठीक है। क्या चीज? हम भगवान से आए हैं, मतलब हम भगवान, हमारे सत्ता भगवान पे आश्रित है, हम शाश्वत रूप से भगवान के दास हैं। अब इसकी अनुभूति जो है तब होगी जब हम अपनी शाश्वतता को समझ पाएंगे, जितना हृदय शुद्ध होगा। फिलोसफी के लिए ऐसे समझना चाहिए इस बात को कि हम भगवान न ते वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनादिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परमसः। कोई समय नहीं था अर्जुन कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, मैं मतलब भगवान या और कोई राजा लोग नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं है कि तुम लोग कभी नहीं रहेंगे, ठीक है। दर्शन का बहुत फर्क पड़ता है, नहीं तो हमारी चेतना भौतिक जगत में, भौतिक चेतना में ग्राउंडेड रहती है, एंकर्ड रहती है। लंगर, लंगर समझते हैं ना, नाव का लंगर अगर तट पे पड़ा रहे तो कितना ही चप्पू चलाएंगे वो नाव आगे नहीं बढ़ सकती है। तो इसलिए दर्शन, और ये दर्शन नहीं है, ये वास्तविकता है, भगवान की महिमा है। कि आपको इसमें कुछ स्पेशल नहीं लगता? कुछ भी स्पेशल नहीं लगता? देखिए भगवान की महिमा है कि नहीं। एक घर बनाने में, जैसे हमारे प्रभु से मेरी चर्चा बार बार होती है, मैंने कहा प्रभु जी जीवन चलाने के लिए तो बहुत कम करने की जरूरत होती है, इतनी मेहनत क्यों करते हैं गृहस्थ भक्त? तो बार बार उत्तर यही आता है कि भाई रोटी पानी चलाने के लिए इतनी दिक्कत नहीं है, घर बनाने में, शादी बच्चों के करने में, पढ़ाई लिखाई करने में बहुत खर्चा होता है। तो एक थोड़ी सृष्टि करने में कितनी मेहनत होती है, उसमें कितने लोगों की हेल्प होती है, और भगवान इच्छा मात्र से सब कुछ कर देते हैं। भगवान को तो बच्चे को पढ़ाने की दिक्कत ही नहीं है, खाली संकल्प करते हैं उनका पहला बच्चा पढ़ जाता है ब्रह्मा जी, है कि नहीं? कितना अच्छा होता है ना, आप संकल्प मात्र से बच्चे को पढ़ा देते, लेकिन ऐसा होता नहीं। संकल्प करने के बाद भी बच्चे नहीं पढ़ पाते, महाराज को बोलते हैं विरोध में कि ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चे को फिर भी गधा फेल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ सृष्टि करने में कितनी कठिनाई होती है, मेरा खुद का अनुभव है, कुछ भी हम प्रोजेक्ट लेते हैं कितनी कठिनाई, ये इसकी सहायता चाहिए, कुक चाहिए, ये चाहिए, लेकिन भगवान केवल इच्छा मात्र से सब कुछ सृष्टि कर देते। तो ये भगवान गुणों का वर्णन है कि नहीं? ठीक है, शब्दार्थ आप समझ गए, हम अनुवाद देख रहे हैं। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति के कारण तथा कार्य, सॉरी, अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न करी। तात्पर्य, प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत छोटा सा है, उसको पहले पढ़ते हैं। भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। ये लाइन थोड़ा हम समझ लेंगे, मैं समझता हूं कि कार्य और कारण शक्तियां, यह समझ में आ रहा है, उपादान कारण, निमित्त कारण, ये सारे जो हैं, जो एक इस जगत में किसी भी प्रभाव को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक होते हैं, ये सब कहां से आए हैं? भगवान से आए हैं। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि जितने भी कारण जगत के हैं वो कैसे हैं, त्रिगुणात्मक हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन भगवान में क्या ये गुण है? नहीं। तो यही बात बोल रहे हैं कि भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है। सदैव मतलब सृष्टि करने के पहले, सृष्टि करते हुए, सृष्टि होने के बाद उसमें प्रवेश करते हुए, सृष्टि का संहार करने के बाद, हर समय भगवान की स्थिति दिव्य रहती है। ठीक है, अतएव वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। ये क्या हमारे लिए आसान है? कोई बहुत रेयर ऐसा समय होगा जब हम भौतिक गुणों से प्रभावित ना हो। और हम लोग अगर यह भी देखने लग जाएं कि इस समय हमें कौन सा गुण प्रभावित कर रहा है, तब भी बहुत आगे बढ़ गए हम। मैं ये बात से चर्चा कर रहा था कि किस प्रकार से हृदय में अगर भोग की इच्छा आ रही है तो दिखना चाहिए कि रजोगुण है, अपने को डिटैच करें, इस पर हम कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना दिखे तो सही, कम से कम इतना दिखता भी नहीं है। अगर चित्त में थोड़ा मननशीलता आ रही है तो कौन सा गुण है? सतगुण। जहां विचार कर रहे हैं जब मुझे मर ही जाना है तो मैं इतना इकट्ठा क्यों करूं, इस तरह के विचार अगर थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है, या फिर अरे मैं इतने भोग इकट्ठे किए क्या मैं से सुखी हुआ, तो इस प्रकार की थोड़ी थोड़ी विचारशीलता अगर आती है तो कुछ सतगुण की वृत्ति है। दूसरों को कल्याण करने की भावना है, कुछ कुछ तो है, इस प्रकार की भावना अगर आ रही है तो सतगुण है। और कहें कि भाई कुछ नहीं रखा है तो सो जाओ, तो ये सब तम गुण है। तो ये प्रभाव भी दिखने लग जाए कि मैं इससे प्रभावित हो रहा हूं, यह भी बहुत बड़ी प्रगति है। समझ ही नहीं पाते हम तो केवल गुणों के द्वारा बहते जाते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं वह गुणों से अप्रभावित रहते हैं। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो गुणों से प्रभावित नहीं है। रजोगुण और सतोगुण में अभी हम उसको एनालिसिस नहीं करेंगे, हम खाली देखिए पॉइंट्स बता रहे हैं। अब एक रजोगुण को पकड़ के हम पूरा क्लास कर सकते हैं, खाली बता रहा हूं कि हम लोग प्रभावित हो जाते हैं, प्रभावित रहते ही हैं। ऐसे भगवान कभी प्रभावित नहीं होते, उनका अस्तित्व रूप कार्य तथा साज सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पहले से विद्यमान थे। इसको हम लोगों ने चर्चा किया था, स एकशतः बहुश्यामः, भगवान ने देखा और वह बहुत हो गए। जब बोला जा रहा है कि उन्होंने देखा तो देखने के लिए क्या चाहिए होती है? आंखें। तो आंखों के लिए क्या चाहिए होता है? चेहरा। चेहरे के लिए क्या चाहिए? शरीर। तो यानी कि और केवल भगवान अकेले नहीं रहते हैं, उनके उनका धाम है, उनके परिकर हैं, वह सब रहते हैं। मैंने उदाहरण दिया था कि अगर कोई कहे कि राजा इस समय कर वसूल नहीं कर रहा है, तो उसका अर्थ है कि राजा आप कुछ नहीं कर रहा है। राजा इस समय अपने घर में भी रह सकता है, हो सकता हो घर में प्रसाद ग्रहण कर रहा हो या कुछ भी और कार्य कर रहा हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर वो कर वसूल नहीं कर रहा है तो उसका मतलब वो कुछ नहीं कर रहा है। तो बहुत बार लोग सोचते हैं कि जब प्रलय हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। सब कुछ क्या खत्म होता है? भौतिक जगत। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान का जो आध्यात्मिक धाम है वह समाप्त हो जाता है, वो हमेशा रहने वाला है। कोई भक्त हमारे घर का कोई भी रिश्तेदार अगर भगवत प्राप्ति कर लिया तो हमें भी खींच ले जाएगा साथ में। ये पिछली बार माता जी को बता रहा था, ये बात प्रभु जी तो लगे पड़े हैं, तो अगर ये पहुंच गए तो आपका निश्चित है, चाहे आप चाहो या ना चाहो आपको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जहां पति जाते हैं वहां पत्नी पीछे पीछे चली जाती अपने आप। जैसे आप पहले यहां पे कार्यक्रम में नहीं आती थी, लेकिन अब आने लगे कि नहीं आने लगे है कि नहीं, तो ये एक स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए जो व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए अग्रसर है उसकी मदद करनी चाहिए। किसी भी तरह से मदद करेंगे तो हमारा भगवान चुन चुन कर सबको लेके जाते हैं। देखिए ना, भगवान ध्रुव महाराज की माँ को लेके गए, उन्होंने तो कोई वजन भी नहीं किया, ध्रुव महाराज को भी याद रहा और भगवान को भी याद रखा, केवल इच्छा मात्र से चले गए। प्रभुपाद जी कहते हैं इसको देख के हमें लगता है कि हमारा भी कोशिश है हमको भगवत धाम ले जाएगा। प्रभुपाद अपनी नम्रता में कहते हैं। तो खैर हम बात ये कर रहे थे कि भगवान का धाम है, भगवान के परिकर हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं, इस समय भी हैं और हमेशा आगे भी रहने वाले सृष्टि के बाद भी। तो अपनी अपनी दृष्टि को इस सृष्टि से हटा करके आध्यात्मिक सृष्टि में, आध्यात्मिक जगत में अगर हम क्या कहेंगे फिक्स करें तो इस जगत की द्वैतता से हम बच जाएंगे। यहाँ के सुख दुख लाभ हानि से चित न लगा करके कैसे भगवान की प्राप्ति करें, इस पे हम फोकस करेंगे, इंग्लिश शब्द आ रहे हैं, केंद्रित करेंगे, स्वाभाविक रूप से इस जगत की द्वैतता से हम मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, मेरी बातें समझ में, जो ना समझ में आए आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं उसको रिपीट करूंगा। कुछ बातें फिलोसफिकल हो सकती हैं। एक फुटनोट है यहाँ पे, मायावाद विचारधारा के प्रधान श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवद्गीता के अपने भाष्य में श्री कृष्ण के इस दिव्य पद को स्वीकार किया है। श्लोक है, नारायणो पर अव्यक्तात्। अव्यक्त मतलब वह स्थिति जब सृष्टि नहीं थी लेकिन वो है भौतिक ही। अव्यक्त मतलब कोई जगत की व्यक्तिकरण नहीं हुआ है, जगत में कुछ प्रकटीकरण नहीं हुआ है, लेकिन वह भौतिक जगत, वह भौतिक स्थिति जिसे प्रधान कहते हैं, उसको, उससे भी परे भगवान है। एक उदाहरण समझते हैं, आप लोग जानते हो कि बादल सरीखा भौतिक जगत है, भौतिक शक्ति रहती है, उस पर भगवान दृष्टिपात करते हैं तो फिर उसके बाद आगे सृष्टि होती है, तो उसी को प्रधान कहा जाता है। उसमें कुछ सृष्टि होती नहीं है, उसमें सृष्टि के सारे अवयव प्रस्तुत होते हैं। जैसे अब फिर किचन का एग्जाम्पल देंगे, आटा है, अब आटे का कोई स्वरूप तो है नहीं, लेकिन आटे से बहुत सारी वस्तुएं बना सकते हो, रोटी, पराठा, पूड़ी, जो भी पकौड़ा, जो भी कुछ, बहुत सारी वस्तुएं आप बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से सारे भौतिक तत्व प्रधान में रहते हैं जिसमें भगवान शोभ करते हैं, शोभ मतलब दृष्टिपात करते हैं, और उससे पूरे जगत की सृष्टि होती है। तो इस प्रधान के भी परे भगवान है, महतत्व के परे भी भगवान है, और थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं प्रधान महत्व तत्व के ये, लेकिन व्यक्त नहीं, उसमें भौतिक जगत व्यक्त नहीं है, उस स्थिति के परे भी भगवान है। ये बात शंकराचार्य भी स्वीकार करते हैं। इस बात को आपको गीता में भी याद होगा, वे कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबोध्यः, जो कहता है कि मैं पहले अव्यक्त था और अव्यक्त हो गया हूं, ऐसा व्यक्ति के पास बुद्धि है ही नहीं। भगवान अव्यक्त के भी परे है, मतलब जो कहीं निराकार है और निराकार से भगवान आए, ये गलत है। भगवान का जो रूप है वो इस निराकार रूप के परे है, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। मुझे लगता है एक ही श्लोक बहुत भारी लगेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। कभी कभी आप लोग भी तो प्रसादम में थोड़ा घी अधिक डाल देते हैं, है कि नहीं, डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है, तो फिलोसफी भी थोड़ा थोड़ा सुन लेना चाहिए, सिद्धांत सुन लेना चाहिए कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वो कोई हल्का फुल्का व्यक्ति नहीं है। प्रायः भगवान कृष्ण के तत्व को न समझने के कारण लोग सहजीय बन जाते हैं, रात शाम सपने में आए, चाहिया पी गए, सारा रारा ऐसे करके भजन गाते रहते, ऐसे भगवान संतुष्ट नहीं थे। भगवान के पास दही पीने के लिए बहुत है गोलक में, आपका दही क्यों पिएंगे सब, अभी सपने में आके सामने क्यों नहीं पिलाते दही। तो बात यह है कि भगवान की महानता को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, अव्यक्त से ही जगत में जीव आता है। ध्यान देना चाहिए कि जीव अव्यक्त नहीं है। यस, अव्यक्त मध्यानिवार्ता, अव्यक्त निधिनान्येवा तत्र का परिदेवना, नहीं वो अलग कंटेक्स्ट में है। अभी मुझे फिर से श्लोक को देखना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं कह सकता, अभी मैं उधर नहीं जाना चाह रहा। अव्यक्त यहाँ पे अर्थ है भौतिक प्रकृति का वह स्थिति जब कोई सृष्टि नहीं हुई थी, बस यही अर्थ हम अव्यक्त का समझते हैं। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, ये तो बड़ा स्पष्ट है, ये समझते हैं आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है, और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। तो ये भी सब बातें बड़ी स्पष्ट हैं, इसमें कोई समझाना नहीं। अब मैं इसको थोड़ा सा अन्य टीकाओं से लूंगा। अरे प्रभु जी, यही बहुत भारी था, अब आप ठीक है आ गए हैं तो सुन लेते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, जो मैं पहले लिंक समझा रहा था आप लोगों को, कहे अरे भाई, सारे शास्त्रों का समन्वय तो उस परब्रह्म में है जो जगत की सृष्टि करता है और सृष्टि करके उसका नियमन करता है। ये तो सीधी बात समझ में आ रही है, मैंने समझाया था आपको, जन्मादियस्य यतः, वेदांत के शुरुआती से होती है कि वेद का अंत हो गया इस बात पे, कि इस जिज्ञासा पे, कि उस व्यक्ति की जिज्ञासा करो, उस परब्रह्म की जिज्ञासा करो जो जगत की सृष्टि करने वाला है, उसका नियमन करने वाला है। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि ये वासुदेव परक है, ये वेद है वासुदेव परक है, तो उस पे ये चार श्लोक बोल रहे हैं। और वो कह रहे हैं, उसके बाद हमने वो डिस्कशन कर लिया था सेम पॉइंट, कि माया जो है वो कार्य कारण रूप है, अपनी माया से जगत की सृष्टि करते हैं। इस पे श्रीला गोस्वामी गेधर जी हैं, ये वल्लभाचार्य संप्रदाय से बहुत सुंदर टीका लिखते हैं, उसको हम देखते हैं। वह श्रीधर स्वामी जी को ही लेते हैं, लेकिन उसको फिर और थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसको सुनने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ईजी है। पहली बात तो वही करते हैं कि आपने यही बात कि शास्त्रों का समन्वय तो जगत के सृष्टिकर्ता उसके नियमन कर्ता के ऊपर है, तो भगवान वासुदेव को क्यों कह रहे हो? तो कह रहे हैं कि ये वो सृष्टिकर्ता कोई और नहीं है, वही वासुदेव है, इसलिए ये कहना बिल्कुल युक्त है। युक्त मत अर्थात बिल्कुल सही है कि शब्द जो वेद हैं वह वासुदेव परक हैं, और इसके लिए 5 श्लोक को कहा जा रहा है। इन श्लोकों में, इस श्लोक में ये वाले श्लोक में 30वें श्लोक में भगवान की सृष्टि लीला को कहा जा रहा है। ससर्ज शब्द देख रहे हैं, ससर्ज मतलब सृष्टि की, भगवान ने इस जगत की सृष्टि करी। और सृष्टि करी कैसे? सृष्टि करने में क्या स्पेशल है? अपनी माया से सृष्टि करी, ठीक है। तो कह रहे हैं उसमें क्या स्पेशल बात है? तो कहेंगे वासुदेव जो है वह स्वयं अगुण है, मतलब वह निर्गुण है, उनमें कोई गुण नहीं है, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण नहीं है, लेकिन फिर भी वे अपनी गुणमयी माया से, जो कि त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक मतलब रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से बनी हुई है, उससे इस जगत की सृष्टि करते हैं। और वह माया का रूप क्या है? सद असद रूप है, यानी इस जगत में कोई भी वस्तु देखेंगे तो उसका कार्य होगा, कोई कार्य है, प्रभाव है, तो उसके पीछे कारण जरूर होगा। ऐसा कोई कारण नहीं देख पाएंगे हम, ऐसा कोई कार्य ना देख पाएंगे जैसे कोई कारण ही नहीं हो। जैसे कोई कहे कि भगवान आदि कारण है तो उनका कारण क्या है, तब क्या बोलेंगे? नहीं, भगवान का कोई कारण नहीं है। तो जहां पे आप स्टॉप होंगे वो कहां है? भगवान। तो भगवान इस जगत से बिल्कुल भिन्न है, जहां पे हर व्यक्ति के पीछे से कोई कारण होता है। तो माया जो कैसी है, ये कारण कार्य कारण रूपी है। ये अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कार्य कारण रूपी का मतलब क्या हुआ। और क्या बोल रहे हैं, ये बड़ा सुंदर अर्थ है। वो कह रहे हैं कि ध्यान देने वाली बात है, ये जगत माया का परिणाम स्वरूप है, इसे शक्ति परिणामवाद कहते हैं। एक हो गए भगवान परब्रह्म और हो गई माया ब्रह्म। माया ब्रह्म सर्वखलुदम ब्रह्म है, लेकिन उस ब्रह्म में भी भेद भेद है। उदाहरण के लिए गाय है, तो गाय से ही गोबर आता है और गाय से ही दूध आता है। तो भगवान की ही शक्ति माया है और भगवान की ही शक्ति जीव है और भगवान की अंतरंग शक्ति है, लेकिन भगवान से आने के बाद भी उन शक्तियों में भेद है। ये बातें समझ में आ रही हैं? जैसे कोई कहे कि भाई गाय से ही दूध आ रहा है और गोबर आ रहा है, तो आप गोबर को घोल घोल कर तो आप नहीं पी सकते गोबर। या कोई कहे कि भाई गोबर ही गाय है तो क्या सही है? तो बड़ा आसान हो जाता है, गाय पालना है, गोबर का एक बहुत बड़ा सा क्या कहा जाए ढेर घर में रखा हो तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि वह गाय हमारे पास रखी है। तो भले ही गोबर गाय से आता है, लेकिन गाय और गोबर में भेद है। ये बात समझ में आ रही है? बहुत सुंदर उदाहरण है। तो उसी प्रकार से माया में और भगवान में बहुत अंतर है। माया कैसी है? सतगुण रजोगुण तमोगुण से बनी हुई है। और भगवान कैसे हैं? निर्गुण है, कोई उसमें उनमें वो नहीं। तो अब इसमें एक और बात बता रहे हैं, कैसी है? अनंत अचिंत रूप धारण करने में समर्थ है। कैसी माया है? अनंत अचिंत रूप धारण करने में। ध्यान दीजिएगा कि माया को समझना भी बहुत मुश्किल है, बल्कि निर्वचनीय अनिर्वचनीय, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते माया क्या है। माया के कार्य हम वर्णन कर सकते हैं, समझा जा सकता है, लेकिन माया क्या है यह समझना मुश्किल है। ये आप 11वें स्कंद में भी पढ़ेंगे, जब पूछा गया कि माया क्या है तो माया को नहीं समझाया गया, माया के कार्यों को समझाया गया। आप कृपया महाराज श्री का भागवत धर्म आप सुनेंगे तो उसमें समझ में आएगा। प्रश्न था कि माया क्या है, तो माया का वर्णन नहीं हुआ, माया के कार्य का वर्णन हुआ। इसी प्रकार से सृष्टि करती है, प्रलय करती है, ऐसे इत्यादि। तो हमने माया का एक और गुण क्या देखा, जो अनंत है, असीमित शक्ति है उसकी, और अचिंत रूप, बहुत सारे विविध रूप धारण करने में समर्थ है। हम तो इस पृथ्वी के ही रूपों को नहीं देख पाए सारे, और स्वर्ग में क्या रूप होगा, ब्रह्मलोक में क्या होगा, उसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी हमारे जो हैं वो सबसे छोटे वाले ब्रह्मा जी हैं, ये तो पता है आपको ना। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी जो हमारे हैं वो सबसे छोटे हैं, और 100 वाले भी हैं, 1000 वाले भी हैं, 1,00,000 मुंह वाले ब्रह्मा जी भी हैं। सबकी सृष्टि कौन कर रही? माया तो कर रही, भगवान के आदेश से। तो अब हो गया ना, समझ में आ रहा है? अनंत असीमित शक्ति वाली माया। अब मान लीजिए जी कोई कहे, इनका स्टाइल जो उनका शैली है बहुत अच्छी लगती है, ठीक है भाई वे माया के द्वारा सब करते हैं, परंतु पूरे विश्व का सृजन करने में समर्थ कैसे हो जाते? ठीक है, आप कह रहे हो कि वे करते हैं, इतनी इतनी शक्तिशाली माया को कैसे वो नियम में रखते हैं, कैसे विश्व की सृष्टि करते हैं, और ऐसा करते हुए भी वे विकार शून्य तो जरूर, विकार शून्य कैसे रहते हैं? अरे भाई, जैसे हाँ, जैसे आप आटा सानेंगे तो हाथ में आटा चिपक ही जाएगा ना। सीधी सीधी बात। जैसे मैंने एक भक्त को फोन किया अभी फार्म में, तो कह रहा है अरे मैं अभी फोन नहीं उठा सकता, मैं हाथ आटा मार, आटा मारना कहते हैं, क्या कहते हैं, आटा मार रहा। तो आटा मारेंगे रोटी बनाने के लिए, तो आटा तो हाथ में चिपकेगा ही। तो क्या इस प्रकार से भगवान सृष्टि करते हैं? माया के द्वारा सृष्टि करते तो जरूर माया से वह जो है प्रभावित हो जाते होंगे, है कि नहीं? भाई आप कपड़े धुलेंगे तो हाथ तो गीला होगा ही। तो क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि विकार शून्य हो? तो माया से उनका संबंध है, उनसे माया से उनका संबंध तो विद्यमान रहता होगा ना, जरूर रहता होगा। अगर कोई ऐसी आशंका करे तो कहते हैं विभू, विभू शब्द है ना लास्ट में, विभू शब्द क्या द्योतित का, द्योतित मतलब, द्योतित मतलब माता जी इंगित कर, द्योत समझते हैं, द्योतित मतलब क्या सूचित करता है, इंगित करता है, कह रहे हैं इसका अर्थ है सर्वथा सदा सर्वत्र समर्थ है। सर्वथा मतलब हर प्रकार से, सदा मतलब हर समय, सर्वत्र मतलब रिकॉर्डिंग चल रहा है। सर्वथा मतलब, सर्वथा मतलब हर तरह से, सदा मतलब हर समय, क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर दिया। सर्वथा मतलब हर तरह से, सदा मतलब हर समय, सर्वत्र मतलब हर जगह समर्थ है। मतलब प्रश्न क्या समझ में, विभू शब्द क्या के आपको ये प्रश्न ही निरस्त हो गया कि माया का संपर्क होते हुए भी विकार शून्य कैसे रहते हैं? मतलब सिंपल सी बात है कि हम सोच रहे हैं और अपने आप आटा गूंद रहा है, रोटियां बन रही हैं, तब तो आप निर्लिप्त रहे ना। वैसे माताओं के लिए तो वरदान हो जाएगा इतना, ऐसा हो तो सोचने मात्र से सब्जी बन जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमें तो लिप्त होना ही पड़ता है। वैसे आप जानते हो कि अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो कर्म करते हुए भी हम लिप्त नहीं रहते, ये कितना सुंदर गुण है, ये तो समझते हैं ना कि आप अगर खाना खाते हैं तो कर्म बंधन लगता है, लेकिन भगवान को अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करते हैं तो नहीं लगता। तो भले ही बाहर रूप से लग रहा है कि लिप्त हो रहा है, लेकिन विभक्त लिप्त नहीं होता। तो जब भक्त के संग ऐसा होता है तो भगवान इच्छा मात्र से कर्म, तो कौन सी बड़ी बात है, ठीक? तो कौन, ये विभू शब्द के अर्थ याद हुए, सर्वथा सदा सर्वत्र समर्थ, 4S। तो ये विभू शब्द से इंगित होता है, विभू मतलब ही होता है सर्व समर्थ। आप कहेंगे भाई वो भगवान विभू क्यों है? तो कह रहे हैं भगवान वैसे विभू क्यों है, तो उस पर कह रहे हैं भगवान। भगवान शब्द भी श्लोक में आया है ना, तो इसका अर्थ है निरति ऐश्वर्य आदि पूर्ण, जितने भी ऐश्वर्य हैं वो असीमित मात्रा में भगवान में है। 6 ऐश्वर्य आप जानते हो, यश बल इत्यादि, तो जो 6 ऐश्वर्य हैं वह भगवान में निरति मतलब हाईएस्ट लिमिट, असीमित मात्रा में भगवान में है, इस कारण से भगवान विभू है, इस बोल रहे हैं। बहुत अच्छा उन्होंने कमेंट्री करी है, ठीक है। अभी मैं छोड़ दूं या विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी की टीका भी ले लेता हूं, प्रभु जी टू मच हो रहा है, लेकिन मेरा काम ही है कि इसको अच्छे से परेशान करना, सॉरी नहीं, अच्छे से पढ़ाना, तो हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी वस्तुतः ज्यादा अलग नहीं कहते, वो यही बात बोलते हैं, समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ये बात, ये कठिन नहीं होगी। वो कह रहे हैं कि जो पितृ शिव और ब्रह्मा जी हैं, जिनकी पूजा लोग करते हैं, उनके सृष्टिकर्ता कौन है? भगवान वासुदेव ही हैं। तो इसलिए वही भजनीय है, भगवान वासुदेव ही भजनीय है। और भगवान निर्गुण है, लेकिन इस जगत की सृष्टि माया के द्वारा करते हैं जो गुणात्मक है। तो आप लोग बच गए, छोटा सा ही कमेंट्री है, ज्यादा बड़ा कमेंट्री इसमें नहीं है। तो हमने श्लोक में क्या सीखा, पहले सीख लेते हैं, फिर से याद कर लेते हैं श्लोक को। श्लोक में हमने सीखा कि इस जगत की सृष्टि करने वाला कौन है, यही शास्त्रों का समन्वय है। और वह कोई और नहीं है, भगवान वसुदेव हैं। इस बात को स्थापित करने के लिए ये पांच श्लोक बोले जा रहे हैं। इस पहले श्लोक में, तीसवें श्लोक में, जगत की सृष्टि भगवान कैसे करते हैं वह बताया गया है, और कैसे करते हैं अपनी त्रिगुणात्मक माया से करते हैं। लेकिन भगवान, यह हमें समझ लेना चाहिए कि भगवान निर्गुण हैं और वह विभू होने के कारण, सर्वसमर्थ होने के कारण, विकार शून्य रहते हुए भी माया के द्वारा जगत की सृष्टि करते हैं। और इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि जो वेद हैं वे वासुदेव परक हैं। यहां तक कोई किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, माइक है मेरे कहा से, कोई प्रश्न है यहां तक कुछ ना समझ में आया हो या कुछ भी नहीं समझ में आया? इसमें भगवान की कौन सी लीला का वर्णन हो रहा है? सृष्टि, इतनी बात समझ में आ गई। और आपने इसमें क्या नोटिस किया कि भगवान पूरी तरह स्वराट है, किसी की मदद नहीं लेते। और क्या चीज सीखने को मिला? भगवान माया के बिल्कुल परे हैं, फिर भी माया शक्ति विद्यमान रहती है, वो दूर से ही उनकी इच्छा मात्र से क्रियान्वित होकर जगत की सृष्टि करती है। इससे बातें हमें सीखने को मिली। मैं समझता हूँ इतना कठिन नहीं होगा, समझ रहे होंगे। क्या आप इसको फिर से स्टॉप करके फिर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग करेंगे? मैं अलग अलग चाहता हूँ, उम्मीद है कि गलत नहीं होगा।